ओम शांति। नेशन इज बिल्ट इन द क्लासरूम एंड टीचर इज एन आर्किटेक्ट ऑफ दैट नेशन, ऐसे हमारे पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कहे थे वो आज भी 100% सही है। तो एजुकेटर्स जो राष्ट्र निर्माण करने वाले हैं, आपका जीवन जैसे आप इस भूमि पर बैठे हैं, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीवन उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। तो औरों को जीवन देने वाले आप शिक्षा वर्ग के हमारे आदरणीय भाइयों और बहनों को सादर प्रणाम। आज मैं अभी इस दयास पर आमंत्रित करने जा रही हूँ आज के सत्र का जो स्पीकर है डॉक्टर बी के ममता दीदी, और जो गेस्ट ऑफ ऑनर है प्रोफेसर राजबीर सिंह जी, और अनदर गेस्ट प्रोफेसर एसबी शर्मा जी। प्लीज आप इस मंच पर विराजमान होने के लिए आमंत्रित करती हूँ। परमात्मा जो सर्वोच्च शिक्षक है, जो सबको शक्ति देने वाला दाता है, अलमाइटी अथॉरिटी है, उनकी याद में उनके साथ हमारे मन बुद्धि का जोड़न 3 मिनट के लिए करेंगे। उनकी याद में साइलेंस में बैठेंगे। ओम शांति। अभी मैं मेहमानों को स्वागत करने के लिए ब्रह्मा कुमारी बहनों को आमंत्रित करती हूँ। हमारी आदरणीय गेस्ट को सम्मानित करें फूलों और तिलक द्वारा। धन्यवाद। अभी मैं आज का जो विषय है एजुकेटर्स द आर्किटेक्ट ऑफ फ्यूचर जनरेशन के इस अम्ब्रेला थीम में आज का अभी का विषय है एजुकेशन फॉर एन एम्पावर्ड फ्यूचर। इस विषय में रोशनी डालने के लिए मैं डॉक्टर ममता शर्मा बहन जी को आमंत्रित करती हूँ। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी डिपार्टमेंट श्री अंबाजी आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज गुजरात से है, और आप हिंदी हिस्ट्री, आप बीए ऑनर्स में हिंदी हिस्ट्री आपका उसमें फर्स्ट क्लास रखे है, संस्कृत हिंदी में भी आप पीएचडी इन हिंदी और पीजी डिप्लोमा इन वैल्यू एजुकेशन में किए हैं। हाँ जी। ओके। आप प्रिंसिपल विवेकानंदा कॉलेज ऑफ आर्ट्स अहमदाबाद के हैं। ज्ञान में 35 ईयर से चलते हैं। फैकल्टी रिसर्च गाइड एजुकेशन प्रोग्राम यहाँ माउंट अबू इस पवित्र धरनी पर आप सेवा करते हैं। अवार्ड के प्रज्ञा भारती हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रोग्राम में, और आप पीएचडी गाइड के 25 स्टूडेंट्स को आप मार्गदर्शाया है। आपके अंडर अभी भी आपके अंडर पीएचडी चल रही है, अभी भी 40 अबो रिसर्च पब्लिकेशन हुए है, 9 बुक अभी पब्लिश हुए है। आदरणीय ममता बहन जी, आप ममता और दया के मुहूर्त के शिक्षा दायिनी सरस्वती माँ अम्बा का प्रतीक है। ओम शांति।
ओम शांति। आदरणीय मंच पर विराजमान आदरणीय प्रोफेसर राजबीर सिंह जी, प्रोफेसर डॉक्टर एस बी शर्मा जी, सविता बहन जी एवं आप सभी प्रबुद्ध अध्यापक एवं एजुकेटर्स जो भी यहाँ पहुँचे हैं, आज का मेरा विषय है एजुकेशन फॉर एन एम्पावर्ड फ्यूचर। इस सृष्टि के निर्माण में 3 लोगों की अति आवश्यकता होती है। पहले माता पिता जो हमें जन्म देते हैं, दूसरे शिक्षक जो हमारे जीवन को बनाते हैं, और परमात्मा का तो पार्ट है ही है। तो इन तीनों का इस सृष्टि पर बहुत अहम पार्ट है, और इस पार्ट को बजाने के लिए हम सभी इस दुनिया में आए हैं। पर हमारा एक एक्स्ट्रा रोल बढ़ जाता है, टीचर जो होता है वो भविष्य का निर्माता। हम बहुत सारी बातें करते हैं, आप आए दिन रोज देखेंगे तो व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया पर बहुत सारे शिक्षकों के बारे में बहुत सारी चीजें, अच्छी भी और बुरी भी, हर प्रकार की दिखाई देती है। लेकिन फ्यूचर के लिए एजुकेशन क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? आप देखेंगे कि पहले एजुकेशन कैसा था, जिन गुरुकुलों की शिक्षा की बात करते हैं, जिस राम और कृष्ण की बात हम करते हैं, गुरुओं की परंपरा में ये जो कॉन्फ्रेंस चली उसमें शुरुआत से ही जो 5G 8G की बात हो रही है, गुरुजी की बात हो रही है, तो उस जमाने में चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे राजा का पुत्र हो, चाहे सुदामा जैसा एक सामान्य व्यक्ति हो, सबकी शिक्षा एक साथ होती थी। और उस शिक्षा में चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, उन्हें गुरु के पास जाना पड़ता था, और गुरु के घर में जाते थे तो गुरु न केवल पढ़ाता था, लेकिन जिन 16 कलाओं की हम बात करते हैं, उन 16 कलाओं में से जिस छात्र को फ्यूचर में कौन सी शिक्षा काम आएगी, उस शिक्षा को वो ज्यादा हाईलाइट करते थे। आज हम क्या करते हैं, कोई एक विषय में उनकी क्या एक्सपर्टी है, उस हिसाब से वो क्या बन सकते हैं, उस हिसाब से उसको शिक्षा देते हैं। तो जैसे शिक्षा हमारा फ्यूचर बनाती है, लेकिन आज की शिक्षा क्या बनाती, हम कह सकते हैं कि आज की शिक्षा क्या बनाएगी हमें? कोई एक व्यक्ति अगर ग्रेजुएशन करके बाहर जाता है समाज में, तो हम गारंटी नहीं ले सकते हैं कि उसे क्या बनना चाहिए या क्या बन सकता है। लेकिन शिक्षक में एक ऐसी तीसरी आंख होती है जो अपने बच्चों में वो पहचान जाता है कि ये बच्चा जो है वो क्या बन सकता है। हमारे अंदर जो गुण है, इसीलिए जब हम कहते हैं कि जो बच्चा, जब हम स्टूडेंट्स में लेक्चर करने जाते हैं तो स्टूडेंट्स को हम यही कहते हैं कि जो बच्चा जितना ही अपने टीचर से नजदीक रहता है, ऐसे ही जो अपने गुरु से नजदीक रहते थे उस जमाने में, तो गुरु उनकी शक्तियों को पहचान करके उसको उस प्रकार से शिक्षा देते थे। तो आज भी टीचर की वो दृष्टि है तीसरी, कि वो छात्र में देख सकता है कि इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, वो कैसे आगे बढ़ सकता है। मेरे टीचर में वो कैपेसिटी थी, इसीलिए मेरे टीचर ने कहा कि तुम्हें ऑफिसर की संतान होने के बावजूद उन्होंने कहा तुम्हें प्रोफेसर बनना है। तो वो प्रोफेसर बनने के लिए शुरुआत से हमने तैयारी की। उस जमाने में भी जब बच्चा समझदार हो जाता था, अपना कार्य अपने आप करने लग जाता था, तब गुरुकुलों में भेजा करते थे। आजकल ग्रेजुएशन होने तक बच्चों को ये नहीं पता होता है कि मुझे आके क्या करना है, इसीलिए ऐसे मार्गदर्शन शिविरों के आयोजन किया जाता है। तो इस तरह से जब हम आज की शिक्षा की बात करते हैं तो सिर्फ इंफॉर्मेटिव है, तकनीकी शिक्षा है, कंफर्ट देने वाली शिक्षा है। आजकल बच्चे क्या करते हैं, रूम्स कैसे हो गए, एसी सेंट्रल एसी ऐड देते हैं स्कूल वाले, हमारी स्कूल कैसी है, सेंट्रलाइज एसी है। तो एसी में बैठ के बच्चे को गर्मी का क्या पता चलेगा कि जीवन की धूप छांव क्या होती है। जीवन में अगर धूप और छांव का अनुभव उन्हें कराना है तो क्या करने जाना पड़ेगा, उसको बाहर धूप में जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार की शिक्षा का आयोजन किया जाए, कई सम्मेलन होते हैं। जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब लागू करनी थी तो उससे पहले गवर्नमेंट ने सबसे विचार मंगवाए कि फ्यूचर के लिए, क्योंकि एक मंत्र दिया गया भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो क्या करना है। तो इसका मतलब अभी भारत विश्व गुरु नहीं है, बनाना है का क्या मतलब है, भारत विश्व गुरु नहीं है, लेकिन वास्तव में उस समय की बातें हैं। हम चाणक्य को जब शिक्षक को याद करते हैं तो सर्वप्रथम चाणक्य को याद करते हैं और उनके वही वाक्य याद करते हैं, प्रलय और निर्माण शिक्षक की गोद में पलते हैं। लेकिन जब क्लासरूम में एसी होगा, कंफर्ट उनको मिलेगा, तो बच्चा एक कंफर्ट जोन में चला जाता है। तब उसका फ्यूचर कैसा होगा न शिक्षक बता सकते हैं न बच्चा खुद। और आजकल तो हमारा एक मेरा एक छात्र है पीएचडी का, वो स्कूल में प्रिंसिपल बन गए। तो वो एक दिन मुझे मिलने आए तो बोलते हैं, मैडम मैं तो ऑफिस में से देखता हूं ना, कोई माता पिता जैसे ही स्कूल में प्रवेश करते हैं तो मेरा तो बीपी शुगर बढ़ जाता है कि कोई शिकायत लेके आए होंगे, हमारे बच्चे को ऐसा कर दिया, हमारे बच्चे को यूं कर दिया। तो बोले मेरा बीपी बढ़ने लग जाता है, कि हर रोज कोई ना कोई समस्याएं। जब हम स्कूल में हैं तो आप देखोगे, आपको भी पता होगा कि आप सभी भी अनुभवी हैं कि स्कूल कॉलेजों में आजकल क्या स्थिति है। तो इस स्थिति को बदलने के लिए शिक्षक जो है वो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला रहे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हर चीज को कहा कि स्किल बेस्ड करो, स्किल बेस्ड करो, है ना। तो स्किल बच्चे के अंदर आनी चाहिए, पर आजकल कौन सी स्किल ज्यादा है, सोशल मीडिया की स्किल, मोबाइल के अलावा और कोई स्किल आजकल खास दिखती नहीं है। तो ऐसे समय में आज के जो एजुकेटर्स हैं, कल हमारी किसी से बात हो रही थी तो वो एजुकेटर्स बोलते थे कि हम तो वनडे खेलने वाले हैं मैडम, टेस्ट मैच हमें पसंद नहीं है। तो आजकल के बच्चे भी क्या है, अगर टीचर वनडे खेलने वाले हैं, मतलब स्पीड में सब कुछ सिखाने वाले हैं, तो बच्चे कैसे होंगे। तो कैसे भविष्य का, कैसे राष्ट्र का निर्माण और प्रलय शिक्षक की गोद में खेलेगा, बताइए। जिस शिक्षा की हम कल्पना करते हैं, जिस शिक्षक की हम कल्पना करते हैं, आए दिन आप न्यूज में पढ़ते रहते हैं कि शिक्षक क्या करते हैं। ऐसा नहीं है कि शिक्षक खराब है, शिक्षक अच्छे हैं, तभी तो आज समाज टिका हुआ भी है, नहीं तो कब का विनाश हो जाता। लेकिन कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिस जैसे इस हॉल में बैठे हुए हैं, वो अच्छे शिक्षक है। क्यों? क्योंकि उनको पता है समय का मूल्य क्या है और इतने बजे हमारा सेमिनार शुरू होने वाला है, तो वो टाइम से पहुंच जाते हैं, तो उनके पास वो कलाएं हैं। तो इस हॉल में बैठने वाले शिक्षक जो है उनके लिए एक बार ताली बजा दीजिए, सभी अपने लिए ताली बजा दीजिए, क्योंकि आप सबको वो चीज की चिंता है कि फ्यूचर बनाना है। तो फ्यूचर बनाने के लिए हमें क्या करना है, अगर हमें कुछ ऐसा कार्य करना है तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर के हमने देखा, ये मैं अपना खुद का अनुभव बता रही हूं, कि पढ़ाई में चाहे हम कितने ही स्कॉलर हो जाएं, यूनिवर्सिटी टॉप कर जाएं, बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारी बातों को हम जीवन में देखते हैं, लेकिन उस समय क्या होता है, आजकल बच्चे कहते हैं कि बहुत बच्चे स्ट्रेस में आ गए। तो स्ट्रेस में आने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना है, अगर हमें अच्छा फ्यूचर लोगों का बनाना है तो अच्छे मूल्यों को अपनाना पड़ेगा। अगर अच्छे मूल्य अपनाएंगे तो स्पिरिचुअल बनेंगे, स्पिरिचुअल बनेंगे तो अच्छा सोचेंगे। ऐसी स्पिरिचुअलिटी, मैं पीएचडी भले हो गई लेकिन जब मैंने ये वैल्यू एजुकेशन का कोर्स पढ़ा, मैं 35 साल से इस संस्था से जुड़ी हुई हूं। कॉलेज के समय से मैं इस संस्था में आई थी, छोटी थी तब नहीं आई थी, पर जब कॉलेज में थी तब इस संस्था से मैं जुड़ी। तो वहां मैं देखती थी, उस समय मैं बहुत हमारे जो टीचर थे वो ब्रह्मा कुमार थे, तो उनके पास हम लोग दो चार स्टूडेंट, पांच छह स्टूडेंट्स मिल करके थोड़ा लीडरशिप करते हुए उनसे झगड़ा करने हम लोग गए। तो हमारे टीचर ने क्या किया उस समय कि हम उनके पास गए कि आप सर, हमारा उस समय उन्होंने हमारा एमए के क्लास बंद कर दिए, बोले नहीं पढ़ाना हमको। तो हमने कहा कि हम कहां पढ़ने जाएंगे, तो आपको एमए शुरू करना है। तो जब हम हमारे टीचर के पास गए तो उन्होंने शांति से हमें पहले सुना, फिर उन्होंने कहा देखो आप लोग ना गुस्सा करते हो तो गुस्सा नहीं करना चाहिए, चलो आ जाओ बैठो एक मिनट आओ। तो वो ऐसे एक मिनट के लिए हमको साइलेंस में बिठा दिया। अब जब साइलेंस में बिठा दिया तो वो जो बातें थी हमारे माइंड में वो क्या हुई, साइलेंट हो गए हम लोग। तो फिर हमने उनको, हम उनको कुछ कह नहीं पाए। तो उन्होंने देखा कि इस ये जो बच्ची है मेरी स्टूडेंट है यानी कि मैं, तो वो इतना क्रोध में मुझसे लड़ने आई है। अगर ये, क्योंकि क्यों लड़ने आई है, तो ये ऑफिसर की बच्ची है तो थोड़े से ऑफिसर के गुण होंगे, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, कहा कि देखो तुम्हें गुस्सा नहीं करना है, शांति की जरूरत है और तुम्हारे अंदर बहुत सारे गुण हैं जो मैं देख रहा हूं, वो हमें ऐसे बताते थे। फिर वो हमें क्रिएटिव वर्क देते थे, चलो ये लिखो वो लिखो ऐसे लिखो, तो हम लिखना सीख गए। फिर वो कहते थे चलो तुम क्लास में, कोई टीचर नहीं आया है तो हमको खड़ा कर देते थे, आप पढ़ाओ, तो हमें पढ़ाना सिखाया। तो इस तरह से प्रैक्टिकल में उन्होंने हमारा जीवन बनाया। और हम इस संस्था में जब सेवा में आए तो ब्रह्मा कुमारी बहनों ने, बड़ी दादियों ने बड़े प्यार से हमको ये सारी बातें सिखाई कि कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, किस तरह से स्टेज बनाना है, किस तरह से स्टेज सजाना है, किस तरह से लिखना है, रिपोर्ट लिखनी है, मतलब हर चीज। अगर भोजन पे भी गए तो कैसे भोजन थाली में परोसना है, किस तरह से सामने वाले को प्रेम से खिलाना है, स्माइलिंग फेस रखना है, छोटी छोटी बातें होती है लाइफ की। तो उनके जो विचार थे, उनका जो उन्होंने जो प्रैक्टिकल नॉलेज हमको दिया, और उस प्रकार से हम उस प्रैक्टिकल नॉलेज को देखते हुए हमारे फ्यूचर को, हमें पता ही नहीं चला कि हमारा फ्यूचर किस तरह से इतना अच्छा होगा और हम आज इस स्थान पर खड़े हो सकते हैं। तो ये चीजें जब वैल्यू एजुकेशन का कोर्स हमने पढ़ा तो हमने देखा कि ओ नॉलेज तो कितना गहरा है, अभी तो हमें कितना सीखना है, वैल्यूज को कैसे हमारे अंदर धारण करना है। आजकल तो एजुकेशन में क्या होता है, ये इस जाति का है, ये इस जाति का, तो जातिवाद चलता है ना, भाई भतीजावाद चलता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी दादियों ने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमें ये ट्रेनिंग दी कि हमें इन सब से उपराम होकर के आध्यात्मिक बनना है। और आध्यात्मिक व्यक्ति वो होता है जो मनुष्य मनुष्य में फर्क न करे, वो सामने वाले को भी आत्मा के स्वरूप में देखे और खुद भी अपने आप को आत्मा समझे। तो ऐसे विचारों की जो पॉजिटिविटी है वो हमारी दादियों से इस वैल्यू एजुकेशन के कोर्स में आप देखना, बहुत जब आप पढ़ेंगे इस कोर्स को तो वास्तव में आपको ऐसा लगेगा कि जीवन में यही है, और उससे हमारा क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन से क्या होता है, हमारी इनर पावर डेवलप होती है, और जब इनर पावर डेवलप हो जाती है ना तो बुद्धि जो है वो शार्प हो जाती है, मतलब खिल जाती है, और उस बुद्धि से हम उस परमात्मा के साथ लिंक जोड़ सकते हैं। जब तक हम ये सोचे कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं ये हूं, मैं हिंदू हूं या मुस्लिम हूं, जब तक हम लोग ये सोचते हैं तब तक आप किसी भी मंदिर में चले जाओ, किसी भी गुरुद्वारे में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपकी बुद्धि में वो मनुष्य का जो देह अभिमान है वो जिंदा रहेगा। जब तक आप उससे ऊपर उठ करके स्पिरिचुअल हो जाओगे, सबको समान समझने लगोगे, तब उस स्पिरिचुअलिटी के कारण परमात्मा से आप बुद्धि का योग लगा सकते हैं। तो ऐसे जैसे आपने हमारे निर्मला दीदी जी को सुना, हमारे निर्मला दीदी जी MBBS डॉक्टर हैं, लेकिन साइंस को उन्होंने विचारों की प्रयोगशाला बना ली और अपने विचारों को इतने पॉजिटिव बनाए और उस अपने विचारों के द्वारा अपने आप को इतना स्पिरिचुअल बनाया कि अपने खड़े रहने से ही 10 लोगों को वो ऐसे वाइब्रेशन दे सकती हैं और उनके अंदर ऐसे मूल्यों का मूल्य डाल सकती है। जैसे वो शांति के वाइब्रेशन देगी तो आप सभी को शांति की अनुभूति होगी। तो ऐसी जब हम जयपुर में पिछले साल हमारे यहाँ मीटिंग थी एजुकेशन विंग की, तो वहां उद्घाटन में कलराज मिश्रा जी आए थे, माननीय राज्यपाल श्री राजस्थान के, तो उन्होंने जब ये कहा कि आपके यहाँ विचारों की प्रयोगशाला है, माना थॉट लेबोरेटरी है, तो थॉट की भी कोई लेबोरेटरी होती होगी, मैंने पहली बार सुना, उन्होंने कहा। हमारे मुकेश भाई थॉट लेबोरेटरी पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जयपुर में, क्योंकि जब तक व्यक्ति के थॉट्स नहीं चेंज होंगे ना, हम तो शिक्षक हैं, शिक्षक के पास पूरा क्लास होता है और उस क्लास में कई प्रकार के बच्चे होते हैं, और वो जो बच्चे होते हैं चाहे यूथ हो तो भी उनको सही रास्ते पर लाने के लिए टीचर को ही काम करना पड़ता है, टीचर को ही काउंसलिंग करना पड़ता है, बच्चों को बड़े प्रेम से समझाना पड़ता है। आप देखो आजकल बच्चों को, पहले के जमाने में स्कूल टीचर क्या करते थे, डंडा रखते थे, है ना, और मारते भी थे, मारने का वो समझते हमको लाइसेंस है, मारने का लाइसेंस टीचर को मिल जाता है, तो उस जमाने में टीचर जो है वो मार सकते थे बच्चों को, क्योंकि माता पिता बोलते भी नहीं थे। आजकल छोटे बच्चे भी क्या हो गए हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं और वो छोटी सी बात में भी क्या कर जाते हैं, नाराज हो जाते हैं या फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। तो छोटे बच्चे भी अगर ऐसे होते हैं, तो जब हम यूथ को भी, किसी को गुस्सा करने वाला टीचर अच्छा नहीं लगता है, लगता है अगर मैं यहां से गुस्सा करके किसी को बोल दूं कि वो पीछे बैठे हुए या आगे बैठे हुए कोई भाई या बहन इस तरह से अगर मान लो टॉन्ट भी लगा दिया किसी को, तो कितना बुरा लगता है। जब हमें बुरा लगता है तो बच्चों को तो लगता ही लगता है। तो आजकल के समय में सबको क्या चाहिए, प्रेम चाहिए, शांति चाहिए, स्नेह चाहिए। तो शिक्षक को शांति चाहिए, बच्चों को स्नेह प्रेम चाहिए। आप किसी को समझाओगे ना तो भी स्नेह प्रेम से ही समझाना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि बच्चे जो है आजकल आपसे भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हो गए, उनके पास टेक्नोलॉजी और उनके पास इंस्टेंट उत्तर होता है, आपने सोचे भी नहीं होगे उस प्रकार से उनके पास उत्तर होते हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताती हूं कि मेरा भतीजा है, कॉलेज में पढ़ता है। तो एक बार जब मैं उसके घर गई तो वहां पर रात को देर रात तक वो टीवी देखता रहा होगा। तो मैं जब रात को उठी पानी पीने के लिए तो मैंने देखा कि वो सो रहा है और टीवी चालू है, तो मैंने टीवी का स्विच बंद कर दिया। फिर मॉर्निंग को जब वो उठा तो मैंने उसको समझाया, मैंने कहा देखो बच्चे, रात तक देर तक एक तो टीवी देख रहे हो तुम, टीवी देखते देखते सो जाते हो, और सो जाते हो तो टीवी तो चल रहा है। एक सिंपल सी बात है कि टीवी के चालू होने से आपको क्या होगा, हमारे घर की बिजली का बिल ज्यादा आएगा, है ना। तो उसने मुझे तुरंत जवाब दिया कि बुआ ऐसा है कि मैंने रात को एसी नहीं चलाया, है ना, तो एसी का बिल बचा कि नहीं बचा, इक्वल। तुरंत जवाब दिया उसने, इक्वल। तो उस समय मुझे उसको समझाना पड़ा कि देखो बेटा, अगर तुमने एसी नहीं चलाया वो अच्छी बात है, पर ये भी नहीं चलाया होता तो डबल बिजली बचती कि नहीं बचती। तो अगर मैंने उससे गुस्सा किया होता, रात को टीवी क्यों चालू करके सो गया, पता नहीं चलता ये वो, तो क्या समझता वो। तो उसी प्रकार से दूसरा भतीजा जो छोटा था, तो जब मैं प्रिंसिपल बनी तो एक अंबाजी से अहमदाबाद माना सिटी एरिया में गई, तो सिटी एरिया का माहौल पूरा अलग था। और कुछ जब एजुकेशन की हम लोग चिंता करते हैं तो मैंने ऐसे ही फैमिली में बैठ के कहा कि आजकल पता नहीं पढ़ने के लिए बच्चे बहुत कम तैयार होते हैं, मतलब पढ़ने जो है ना कॉलेज में आना भी इतना कम पसंद करते हैं, और आते हैं तो क्लास में आना कम पसंद करते हैं। तो वो छोटे भतीजे ने तुरंत कहा बुआ उसके लिए आपको ना एटमोस्फियर बनाना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छी बात है, ये बात तो सही है कि एटमोस्फियर बनाना पड़ेगा कि बच्चे पढ़ने के लिए आए। तो ऐसा एटमोस्फियर हमारी विचारों की जो पाठशाला है, थॉट लेबोरेटरी है, उसमें ऐसा एटमोस्फियर हमारे मुकेश भाई ने एक सैंपल बनाया कि देखो ये विचारों की पाठशाला है, और यहां हमारे जैसे जैसे विचार अच्छे होते जाएंगे ना, पॉजिटिव होते जाएंगे, ऐसे ऐसे हमारा माइंड शुद्ध होता जाएगा। और उस माइंड को शुद्ध करने के लिए ब्रह्मा कुमारीज के पास एक सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन है राजयोग मेडिटेशन। तो ऐसी उन्होंने करीब 4-5 साल से वहां पर वो थॉट लेबोरेटरी, शायद 4-5 साल हुए मुकेश भाई, है ना, 4-5 साल से वो थॉट लेबोरेटरी चला रहे हैं जयपुर में। और उसमें से आज इस कॉन्फ्रेंस में हमारे दो सैंपल तैयार होकर के आए हैं। आइए, ये दो यूथ हैं जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं और वहां की थॉट लेबोरेटरी में आ गया है, और इनके लिए सभी ताली बजाइए। ये दोनों जो बच्चे हैं, ऐसे तो काफी बच्चे हैं वहां जितने हैं, पर यहां पर आए हैं ये दो बच्चे, कितने हैं वहां पर टोटल 50 बच्चे हैं, जो 50 बच्चों का एक ग्रुप तैयार एक शिक्षक कर सकता है, ठीक है ना। तो ये दो बच्चों के लिए हमें बहुत गर्व है कि ऐसे यूथ अगर तैयार हो जाए, एक शिक्षक यदि एक यूथ तैयार करे, तो सोचिए हमारी फ्यूचर जनरेशन कैसी होगी। ऐसे ही मूल्यों से भरी हुई, ऐसे ही स्पिरिचुअल, और ऐसे राजयोग का अभ्यास करते करते हम सभी इस चिंता को मिटा सकते हैं कि आने वाला समय, फ्यूचर, जो पहले हम कहते थे भारत सोने की चिड़िया है, ऐसी ही भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा। तो करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, कहते हैं ना। तो ऐसे ही राजयोग का अभ्यास करते चले और हम अपने विचारों के प्रवाह को पॉजिटिव करते चले। तो आइए हम सब अपने विचारों को थोड़ा सा पॉजिटिव करते हैं राजयोग के माध्यम से। तो राजयोग मेडिटेशन में हम सभी अपनी बुद्धि को, शरीर को स्वच्छ रखते हुए, स्वस्थ बनाते हुए, आप सभी थोड़ा सीधा बैठ जाएंगे और 2 मिनट के लिए हम मेडिटेशन भी करेंगे। पहले पहले बुद्धि इधर से उधर भटकती है, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास हो जाएगा हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है, और जब बुद्धि स्थिर हो जाती है तो बुद्धि शार्प हो जाती है, और तब हम परमात्मा के साथ अपनी बुद्धि का योग लगा सकते हैं। तो उसके लिए जब विधि हमें नहीं मालूम है तो उस विधि को हम सीखेंगे कि कैसे आज आप 5 मिनट के लिए घर जाकर के रोज आप 5 मिनट, दूसरे दिन 10 मिनट, तीसरे दिन 15 मिनट, इस प्रकार से इस अभ्यास को बढ़ाते जाएंगे और अपनी बुद्धि को शुद्ध करते जाएंगे, तो आने वाले समय में हम एक उत्तम मनुष्य जो देवताओं समान होते हैं ऐसे बन जाएंगे। तो अपने विचारों को दुनिया से, दुनिया की बातों से दूर करके एक स्थान पर अपने भ्रुकुटी के मध्य में अपने आप को आत्मा समझते हुए स्थिर कीजिए और विचार कीजिए कि मैं एक आत्मा हूं, मैं आत्मा इस देह से न्यारी, चैतन्य परमपिता परमात्मा की संतान, शुद्ध और पवित्र हूं। इस दुनिया के सारे प्रपंचों से दूर मूल्यों से भरपूर शांति, प्रेम, पवित्रता सभी गुणों से भरपूर हूं। मैं बहुत अच्छी, सारे विश्व की आत्माओं के प्रति शांति के प्रकंपन फैलाने वाली, पवित्र आत्मा हूं। परमपिता परमात्मा के सबसे नजदीक की, समीप की आत्मा हूं। परमात्मा के दिव्य कर्तव्यों को पूरा करने का दायित्व मुझ पर है, उसे मैं अवश्य पूरा करूं। मैं अपने ज्ञान के प्रकाश से इस विश्व का उद्धार करने वाली आत्मा हूं। आने वाले समय में मुझे अपने दिव्य कर्तव्य को प्रामाणिकता से करना है। मैं अपनी सारी कमी कमजोरियों को परमात्मा प्रदत्त शक्तियों से दूर करने वाली आत्मा हूं। मेरे विचार, मेरे संकल्प हमेशा सकारात्मक रहेंगे, शुद्ध रहेंगे, पवित्र रहेंगे। आने वाले समय को बहुत सुंदर बनाने का अपना कर्तव्य मैं पूरा करूं। परमात्मा मुझे दिव्य गुणों और शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं। मैं उन दिव्य शक्तियों से मेरे संबंध संपर्क में आने वाली प्रत्येक आत्मा को संपन्न करूंगी। मैं अपने दिव्य कर्तव्य को हमेशा स्मरण में रखूंगी। सकारात्मक चिंतन एवं शुभकामनाओं के साथ मैं इस विश्व की सभी आत्माओं में मूल्यों और गुणों का संचार करूंगी। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति।
धन्यवाद आदरणीय ममता दीजी जी। सा विद्या या विमुक्तये, समस्याओं से मुक्त, विषय विकारों से मुक्त, दुखों से मुक्त और दुराचार से मुक्त, सदाचार सद्गुण वाला समाज लाने का, भविष्य निर्माण करने का शिक्षा जो है राजयोग, उस राजयोग की शिक्षा आप अपने साथ ले जाएंगे। स्पिरिचुअल नॉलेज से अपनी जीवन, अपना जीवन और अपने बच्चों का जीवन भी उज्जवल बनाएंगे, ये आशा करते हुए मैं आगे बढ़ते हुए आज के मेहमान प्रोफेसर राजपाल सिंह भाई जी, वाइस चांसलर महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक। भाई साहब, प्रोफेसर राज सिंह भाई जी इज करेंटली वाइस चांसलर ऑफ महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, a state institution of national and international reputation. Singhji is development communication from Kurukshetra University, and Professor Singh academic career span over 30 years. He worked as a senior public relations professional with Haryana government and working as a professor in the Institute of Mass Communication, and he is emancipatory power of knowledge. During the current tenure of the vice chancellor, the institution took a big stride in virtually very aspect. In every aspect, the university was accredited with NAC A+. Clap in for this grade, and was included in top 100 universities of India in NIRF ranking. As the vice chancellor, Professor Singh contributed to the overall administrative and academic reformation, and he has contributed to the establishment of a digital learning center, and the university also established Dean Dayal Upadhyaya Center for Excellence for the Rural Development, Center for IRP Studies, and Center for Study of Indian Thinker and eminent personalities. Thank you, Bhaiji, Rajendra Singh Bhaiji, Professor Rajendra Singh Bhaiji, Vice Chancellor.
Om Shanti. Manch par maujood Brahma Kumari Savita Benji, ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर ममता बहन जी, प्रोफेसर डॉक्टर एसबी शर्मा जी, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स फ्रॉम ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, my fellow colleagues, educators from universities and colleges. First of all, let me thank Behan B.K. Sivani and Behan Sangeeta and Shalu, jinke inspiration se I got this opportunity to join you all learned people. Lagbhag 22 saal pehle Gujarat ke Bhuj aur Rapid area mein भूकंप की त्रासदी हुई और उस वक्त मैं कुछ युवा साथियों के साथ लोगों की मदद के लिए 2 से 3 सप्ताह जो कुछ बन पाया वो करते हुए वापसी में मुझे इस ज्ञान रूपी सरोवर में आने का मौका मिला और ठीक 22 साल बाद पिछले महीने ही बहन बी के शिवानी का एक कार्यक्रम हमारे विश्वविद्यालय इससे भी बड़ा सभागार विश्वविद्यालय में है उसमें उनका प्रोग्राम था तो बहन शिवानी ने आदेश दिया कि आपने हमारे यहां एजुकेटर्स की एक कॉन्फ्रेंस है उसमें पहुंचना है और बाद में लगातार बहन संगीता और बहन शालू ने मुझे बार बार इस बात के लिए प्रेरित करते रहे कि उसमें आपने जरूर शामिल होना है और आपने एक सेशन में कुछ बातें भी रखनी हैं कि कैसे एजुकेटर एक आर्किटेक्ट के तौर पे फ्यूचर जेनरेशन के एक शिल्पकार के तौर पर काम करता है बहन डॉक्टर ममता ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कुछ उदाहरण के साथ उस शिल्पकार के बारे में यानी शिक्षकों के बारे में कुछ बातें रखी उन्होंने बताया कि माता पिता और शिक्षक और परमात्मा ये तीनों जो है किसी भी इंसान के जीवन को सेव करने में उसको एक दिशा देने में बहुत बड़ा रोल होता है ये कॉन्फ्रेंस जो है एजुकेटर्स के रोल को लेकर रखी गई है इसके लिए मैं ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया यहां आने का और बोलने के लिए और मुझे जो विषय दिया गया है इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एम्पावरिंग इंडिविजुअल्स फॉर ए बेटर फ्यूचर मैं कोई चीज दो तरीके से कही जा सकती है एक खुद का उदाहरण और दूसरों के उदाहरण या दूसरों के विचारों को रखते हुए बात को समझाया जा सकता है मैं जहां तक खुद के बात के उदाहरण की बात करूं इट इज ओनली एजुकेशन which helped me and which empowered me and due to that empowerment today I am here. वरना एक खेतीबाड़ी करने वाले परिवार का बच्चा शायद ये नहीं सोच सकता कि वो एक दिन विश्वविद्यालय का कुलपति भी होगा बात को और आगे बढ़ाते हुए पिछले दिनों कुछ महान व्यक्तियों कुछ महापुरुषों के विचारों को जानने की कोशिश की और कुछ थॉट्स जो है, क्योंकि ये थॉट्स की लैब है, तो उन्हीं थॉट्स को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। बहन ममता ने कहा कि शिक्षा कैसी हो। मैं यहां शिक्षा के माध्यम से या शिक्षा कैसे व्यक्ति को एम्पावर कर सकती है, उस पर कुछ महापुरुषों के, कुछ महान व्यक्तियों के विचार, और उसमें जो मैंने जीवन में सीखा है, एक्सपीरियंस किया है, उन बातों का समावेश करते हुए मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। एजुकेशन हैज लॉन्ग बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए पावरफुल टूल ऑफ एम्पावरमेंट, इक्विपिंग इंडिविजुअल्स विद नॉलेज, स्किल्स एंड विजडम ऑफ द वर्ल्ड। इट इज एन इनेबलिंग फोर्स दैट हेल्प अस नेविगेट द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द ह्यूमन लाइफ, बट ऑल्सो द स्ट्रक्चर्स ऑफ द सोशल, पोलिटिकल एंड अदर इंस्टीट्यूशंस रेस्ट ऑन इट। From fostering critical thinking and intellectual curiosity to promoting personal and professional growth, education plays a decisive role. There is no doubt about the fact that one of society's fundamental building blocks is education. As Benjamin Franklin once said, an investment in knowledge pays the best interest. An investment in knowledge pays the best interest. Investing in education can help in constructing societies that are prosperous, healthy, and equitable. Everyone has the right to education, and this has been clearly stated in 1948 through Universal Declaration of Human Rights, through its Article 26. But education is not just a right, it is also a key to human growth that opens doors to new possibilities and freedom. Interestingly, throughout history, access to education has been a privilege limited to select few. In ancient times, education was often reserved for elite class, with only wealthy and privileged having opportunity to access formal education. In many societies, education was seen as luxury, and vast majority of people, especially those from lower economic background, were denied chances to acquire knowledge and skill. This lack of access to education resulted in significant disparities in wealth, power, social mobility, perpetuating inequalities and limiting the potential of entire population to this day. That shows the worth of education, that how education can empower an individual. Access to education in the modern world is a critical issue that significantly impacts individual and society. While education is widely recognized as a fundamental human right, not everyone has equal opportunity to access quality education. In many parts of the world, there are still significant disparities in access to education due to factors such as poverty, gender discrimination, geographic location, and lack of resources. This inequality in access to education can perpetuate cycles of poverty, social exclusion, limiting individuals' potentials and hindering societal progress. Ensuring equitable access to education for all individuals, regardless of their background or circumstances, is essential for empowering people and creating more just and inclusive world. Inclusive education, which promotes equal opportunities for all individuals regardless of their background or abilities, is a powerful force that empowers individuals to reach their full potential. Inclusive education embraces diversity, fostering inclusivity and providing support and accommodation to meet the unique needs of every learner. In an inclusive education environment, individuals with diverse abilities, ethnicities, cultures, genders, and socio-economic backgrounds can learn and thrive together. This inclusive approach to education nurtures a sense of belonging, promotes mutual respect, and encourages collaboration and empathy among learners. Inclusive education recognizes and values the unique strengths and abilities of every individual, enabling them to develop self-confidence and self-advocacy skills and a sense of empowerment. It equips individuals with knowledge, skill, and attitude needed to participate fully in their communities, engage in lifelong learning, and pursue their dreams and aspirations regardless of any perceived barriers. Education has a significant impact on how we perceive life and how we live, and fosters critical thinking and intellectual curiosity. I think that is the very aim of National Education Policy 2020, that how we can ensure the holistic development of our students. Education encourages individuals to question, analyze, and evaluate information and ideas critically. It equips them with the ability to discern between facts and fiction, to seek evidence and information, and to make informed decisions. Education cultivates a sense of curiosity and wonder, discourages rote learning, encouraging individuals to constantly seek knowledge and expand their horizons. It provides them with the tools to think critically, engage in reasoned discourse, and challenge assumptions, which are essential skills in navigating the complexities of the modern world. Education also plays a crucial role in personal and professional growth. It equips individuals with skills and knowledge needed to pursue their passion, interests, and goals. Through education, individuals acquire a diverse range of skills, including communication, problem solving, and leadership, which are essential in workplace and in life. Education thus provides individuals with tools to succeed in their respective field, contribute to society, make a positive impact on the world. Vivekananda says that real education is not just acquisition of knowledge, but development of character and virtues, which Dr. Mamata Ben pointed out. Education provides opportunities for individuals to learn about internalize the important moral values such as honesty, integrity, compassion, respect for others, and fairness. These values are often taught explicitly through character education program, ethics courses, social emotional learning curricula. Additionally, values are often infused into culture and environment of educational institutions through codes of conduct, policies, and expectations, which help shape the moral compass of individual. Education often includes social and emotional learning that focus on developing emotional intelligence, empathy, and social skills. Educators, parents, peers play a critical role in moral development of individuals through their behavior and actions. It is a fact that children learn from what they see, they imitate behavior presented by adults they are surrounded with. As an individual, we spend a majority of our lives at school, college and universities. Educational institutions can provide positive role models who exhibit moral values and principles which can serve as examples for students to emulate. Teachers who model fairness, integrity and kindness in their interaction with the students can have a profound influence on moral development of the students. Moreover, education has the power to break the cycle of poverty and inequality. As former United Nations General Secretary Kofi Annan stated, education is a human right with immense power to transform. On its foundation rests the cornerstone of freedom, democracy and sustainable human development. Furthermore, Rabindranath Tagore said, the highest education is that which does not merely give us information but makes our life in a harmony with all existence. How we can coexist, that is the purpose of education, that's how the education empowers all of us. Education plays a crucial role in promoting tolerance, understanding and diversity. It helps individuals develop a broader view, appreciate cultural differences and embrace diversity. Education fosters empathy, compassion and respect for others, promoting social cohesion and inclusivity. South African anti-apartheid revolutionary and statesman Nelson Mandela once said, education is the great engine of personal development. Education empowers individuals to transcend barriers of race, religion, nationality, promoting mutual understanding and respect for diversity. In addition, education has the power to promote civic engagement and fosters active citizenship. It equips individuals with knowledge and skill needed to participate in democratic process, engage in informed civic discourse, and contribute to their communities. Education that emphasizes the importance of community engagement, volunteerism, and civic participation nurtures individuals who are committed to making a positive difference in the society. And you, Brahma Kumaris, are the apt and best example of this commitment to bring a positive difference in society and thus to make the world a better place for living. Let me conclude by putting forward Mahatma Gandhi's concept of education, wherein he greatly emphasized that education should bring culture of peace, sincerity of work, dedication to the cause of nation, right feelings, economic advancement, physical improvement, and above all, social and cultural progress. That is how the education can empower individual and community. This is how education should empower individual to create a better world. Let me again thank Brahma Kumari Iswariya Viswavidyalaya for providing me this excellent opportunity after a gap of 22 years. I missed a lot, and after coming to this place, I do feel I could have come here more frequently. I will try my best to be here as much as possible. And from this dais, I would request the Brahma Kumari Iswariya Viswavidyalaya to collaborate with the universities like us so that your message of how to make this world a better place for living, if we take this message to youth, I think that will be in the larger interest of the communities. Thank you. Thanks a lot.
Thank you, Dr. Professor Rajbir Singh Bhaiji. Brahma Kumaris, in Brahma Kumaris there is no discrimination at all. That's why he invited us to do such a service in his university campus also. Once again, I invite him to this premise. Now, I would like to invite Professor S.B. Sharmaji, Vice Chancellor, Millennium University, Republic of Malawi, Africa. Professor S.B. Sharma ji is a PhD in geology and education and 26 years in educational administrator as a
सबसे पहले मैं आप सभी प्रबुद्ध श्रोता समुदाय को नमस्कार करना चाहूंगा। आप सभी भारतवर्ष के शिक्षा की गौरवशाली परंपरा का निर्वहन करने के लिए यहां बैठे हुए हैं, सो आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दिस वंडरफुल प्रोग्राम। द आर्किटेक्ट ऑफ फ्यूचर जनरेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय एजुकेशन विंग ऑफ राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन एंड प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय माउंट आबू। विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा भाई मृत्युंजय जी का, चेयरपर्सन एजुकेशन विंग, बहन निर्मला जी का जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है इस ऑर्गेनाइजेशन में, बहन सुमन जी का, बहन ममता जी का जो यहां उपस्थित हैं, और बहन सविता जी का, और उन सभी लोगों का जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान इतने बड़े और आकर्षक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिया है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति की सफलता, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें लीडरशिप क्वालिटी कितनी है। आज मेरे विचारों में आप इस बात को जान पाएंगे कि वो क्या वजह है, जैसा कि बहन ममता जी ने मेंशन भी किया इस चीज को, आखिर क्या वजह है कि हमें ये दोहराना पड़ा कि भारत विश्व गुरु बन जाएगा अगर हम नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर देंगे तो। और जो भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था किसी जमाने में, आखिर आज हमें फिर से पुनः इतनी सारी कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार, वर्कशॉप, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम क्यों आयोजित करने पड़ रहे हैं, उन सभी चीजों को फिर से प्राप्त करने के लिए, इस चीज का मंथन करने के लिए हम यहां इकट्ठे हुए हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, इसका उद्देश्य भी है शिक्षक नई पीढ़ी के शिल्पकार। जब हम एजुकेटर्स की बात करते हैं, दैट मीन्स देर आर सो मैनी कैटेगरीज अंडर दिस हेडिंग। दे आर पॉलिसी मेकर्स, दे आर वाइस चांसलर, दे आर प्रिंसिपल्स, दे आर टीचर्स, एंड दे आर सो मैनी पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन ऑल सच टाइप ऑफ थिंग्स। तो सबसे पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा अपनी पुरातन संस्कृति की तरफ, जहां जब हमने शिक्षा की शुरुआत की थी, जैसा कि बहन ने मेंशन भी किया था इस चीज का, उस वक्त हमारी क्या कल्पना थी शिक्षा के बारे में। शिक्षा मीन्स सर्वांगीण विकास, मनुष्य का सर्वांगीण विकास। और सर्वांगीण का अर्थ होता है मन, शरीर और आत्मा, बॉडी माइंड एंड सोल। रिमेंबर द पॉइंट, जब तक शिक्षा सार्वजनिक रूप से, सार्वभौमिक रूप से, यूनिवर्सली इस बात का ध्यान नहीं रखेगी कि क्या सर्वांगीण विकास हो रहा है, तब तक हम उसके उद्देश्यों का पालन नहीं कर सकते। एक और जो बात सबसे महत्वपूर्ण जो मैंने महसूस की अपने पूरे कैरियर में, वो है इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। अनफॉर्चुनेटली हमने इन्फॉर्मेशन को शिक्षा मान लिया, अनफॉर्चुनेटली हमने ज्ञान को ही कुछ अलग तरीके से परिभाषित कर दिया। वही कारण है और यही कारण है कि हम उन मूल्यों को प्राप्त नहीं कर पाए जिन मूल्यों के लिए वास्तव में हजारों लाखों करोड़ों साल पहले शिक्षा की कभी शुरुआत की गई होगी। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा हमारी उस संस्कृति की तरफ जहां हमने शिक्षा की शुरुआत की थी, अस्तो मां सद्गमय। सुना है ना आपने, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्यु मां अमृतम गमय। ये वो शब्द थे जिसकी कल्पना की गई थी कि शिक्षा क्या करे। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि शिक्षा क्या करे, क्या शिक्षा ऐसा कर रही है, क्या शिक्षा हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जा रही है, क्या शिक्षा हमें मृत्यु से अमरता की तरफ ले जा रही है। शायद ऐसा नहीं है। कहां भटका हुआ, भटका हुआ कि जब हमने शरीर को सब कुछ मान लिया, मन को शरीर का गुलाम कर दिया, और ये हमारे पांच सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं, ये जो कुछ भी देखते हैं हमने उसी को सच मान लिया। जबकि शिक्षा क्या थी, शिक्षा का मूल भाव क्या था, इस विश्वविद्यालय की जो मुख्य अवधारणा है, जो कंसेप्ट है, इसकी स्थापना क्यों करनी पड़ी, जब ये देखा गया कि हम अपने मूल स्वरूप से दूर चले गए हैं। हमारा मूल स्वरूप क्या है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम बुद्धि भी नहीं है, लेकिन हमारी बुद्धि गुलाम हो गई हमारी शरीर की, तब हम वास्तव में दूर होते चले गए अपनी प्राचीन संस्कृति और परंपरा से। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आखिर वो कौन से तत्व हैं, वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हमने हमारी दूरी आत्मा से बढ़ गई। पानी मैं माफी चाहूंगा, थोड़ी सी मेरी आवाज में दिक्कत आ रही है क्योंकि पिछले 3-4 दिन से मैं फीवर में हूं, तो मेरी वॉइस उतनी आपको आकर्षक नहीं लग रही होगी। मौसम चेंज होने के कारण मुझे फीवर हो गया था पिछले 3 दिन से, तो आवाज में भारीपन है, लेकिन आप मेरे भाव को समझने की कोशिश कीजिए। जब हम बात करते हैं कि शिक्षा अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर रही, तो सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे सामने आती है कि वो क्या कारण है कि जिसकी वजह से शिक्षा अपने उद्देश्यों का प्राप्त नहीं कर रही। जैसा कि अभी हमारे कुलपति महोदय जी ने बताया, शिक्षा हमें गौरवान्वित करती है, शिक्षा हमें प्रॉस्पेरिटी देती है, और शिक्षा हमें वो सारे अधिकार देती है जिससे हम एक सफल जीवन जी सकते हैं। आप सभी जानते हैं पढ़ा लिखा होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, और हम बड़े बड़े पदों को शोभायमान करते हैं, बड़ी बड़ी पोजीशंस को, बड़े बड़े अस्तित्वों को प्राप्त करते हैं शिक्षित होने के बाद। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं, खो क्या गया, हमने लॉस्ट क्या कर दिया, वो है एक आत्मिक चिंतन। आत्मिक चिंतन का मतलब हुआ कि अगर मैं पढ़ लिख गया तो मैंने अपनी प्रॉस्पेरिटी पे ध्यान दिया, अपनी समृद्धि पे ध्यान दिया, अपने सुख पे ध्यान दिया, जिसके कारण मैं उन सभी मनुष्यों से दूर होता चला गया जिनका मैं पार्ट था। वास्तव में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, हमारे धर्म क्या कहते हैं, हमारा ज्ञान क्या कहता है कि हम सभी वी ऑल आर डिस्क्रीट यूनिट ऑफ इनफाइनाइट सोल। अगर वो परमात्मा है तो हम सब छोटी छोटी आत्माएं हैं जो उसका पार्ट हैं। हमें वास्तव में शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें सेक्रीफाइस को समझना चाहिए, हमें ये महसूस करना चाहिए कि अगर हमने शिक्षा ग्रहण की है तो शिक्षा ग्रहण करने का असली अर्थ यह है, असली तात्पर्य है, असली मकसद यह है कि हम संवेदनशील बने। और संवेदनशील बनने का मतलब होता है क्या हम दूसरे के दर्द को, दूसरे की भावनाओं को आत्मसात करने में समर्थ हैं। अगर ऐसा नहीं है तो यकीन मानो हमारी शिक्षा अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर रही है, और कहीं ना कहीं हमें जरूरत है इस चीज का चिंतन करने की। कुछ उदाहरण भी मैं आपको पेश करना चाहूंगा, आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूंगा महान वैज्ञानिक मैडम क्यूरी की तरफ। आप शायद जानते होंगे महान वैज्ञानिक मैडम क्यूरी ने रेडियम की डिस्कवरी की थी, और आपको पता होना चाहिए जिस समय वो रेडियम के ऊपर काम कर रही थी, रेडियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है, और उसमें से निकलने वाली किरणें पल पल हर क्षण हमें मृत्यु की तरफ ले जाती हैं। लेकिन उस महिला को ये पता था कि ये जो मेरी डिस्कवरी है, ये मेरा जो अनुसंधान है, ये हजारों लाखों करोड़ों लोगों को जीवन दान देगा। आप जानते हैं हम रेडियम का प्रयोग कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, शिक्षित होने का मतलब यह है क्या आप संवेदनशील हैं, क्या आप सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं। यकीन मानो जब आपके अंदर ये भावना पैदा होती है तब हम कहते हैं कि हाँ, अब आपके डिसीजन, हमारे दो तरीके के डिसीजन होते हैं, एक डिसीजन जो हम शरीर के लिए लेते हैं, दूसरे डिसीजन जो हम आत्मा के लिए लेते हैं। आत्मा के लिए डिसीजन लेने का मतलब होता है कि आपके अंदर त्याग की भावना है, आपके अंदर परमार्थ की भावना है। और जब आप स्वार्थी होते हैं, आपका अपना एक्सपीरियंस रहा होगा, हमारे जीवन में दो चीजें होती हैं, या तो हम दूसरे की व्यक्ति मानते बात मानते हैं सारी, या दूसरा व्यक्ति हमारी बात मानता है, या आपका अपना एक्सपीरियंस होगा। आपने ये भी देखा होगा, आप तो सभी टीचर्स हैं, आपने देखा होगा कुछ टीचर्स से हम बहुत आकर्षित होते हैं जबकि कुछ टीचर्स से हम बोर हो जाते हैं, या आपका अपना एक्सपीरियंस रहा होगा। आखिर ऐसी कौन सी चीज है कि हम कुछ व्यक्तियों से बहुत आकर्षित होते हैं जबकि कुछ व्यक्तियों की परछाई से भी डरते हैं, घबराते हैं कि कहीं वो हमें मिल ना जाए, और मिल जाए तो हम बचकर निकलने की कोशिश करते हैं। साथियों, आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, हम सभी मनुष्य जाने अनजाने अपने शरीर में से एनर्जी का एब्जॉर्प्शन और इमिशन करते हैं। हमारे शरीर ऊर्जा ग्रहण करते हैं और ऊर्जा रिलीज करते हैं। अगर हमारी ऊर्जा पॉजिटिव है तो लोग हमारी तरफ आकर्षित होंगे, हमारी ऊर्जा नकारात्मक है, नेगेटिव है, तो लोग हमसे दूर हटेंगे। तो सही मायने में शिक्षा का मतलब है ऐसे शिक्षक तैयार करना, चूंकि ये कॉन्फ्रेंस शिक्षकों के लिए तैयार की गई है, तो क्या आपके विचार आपका थॉट प्रोसेस इतना पावरफुल है, यू आर सो कमिटेड, वट एवर यू वॉन्ट टू टेल, वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव, यू कैन, देन वी कैन से यस, द फुलफिलमेंट ऑफ एजुकेशन इज गोइंग ऑन। तो ये जरूरी है कि आप अपने थॉट प्रोसेस को नियंत्रित करें और लगातार इस चीज पर काम करें कि क्या जो आप सोचते हो क्या वास्तव में वैसा ही हो रहा है। अगर वैसा नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं आप अपने उद्देश्यों से दूर जा रहे हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने अक्सर सुना होगा विजडम, एक शब्द है विजडम, एक है इंटेलिजेंस। आपको पता है इंटेलिजेंस और विजडम दोनों में क्या फर्क है? विजडम, यहां मेरा टॉपिक भी था आज के इस प्रोग्राम का टॉपिक था, विजडम फॉर लर्निंग एंड लिविंग एंड लीडिंग। इंटेलिजेंस होना बहुत आसान बात है, आप चार किताबें पढ़ सकते हैं, लेक्चर सुन सकते हैं, आप इंटेलिजेंट हो सकते हैं। क्या इंटेलिजेंट होना सफिशिएंट है? नहीं, विजडम होना जरूरी है। विजडम का मतलब होता है आपके जो डिसीजन है, आपका जो जीवन है वो कितना जनहित में है। हमारी सबसे महत्वपूर्ण परंपरा है जनहित होना, गुड जजमेंट, इनसाइट। इनसाइट का मतलब होता है कि आप अपने अंतर्मन से अपनी आत्मा के साथ कितना इंटरेक्शन में है, कितना आप उसके साथ बातचीत करते हैं। तब एक शब्द आता है अवेकन एंड एनलाइटमेंट। यहां आप महसूस करते हैं किसी भी व्यक्ति के चेहरे पर आपको थकान नजर नहीं आएगी, किसी भी व्यक्ति के चेहरे पर आपको दुर्भावना नजर नहीं आएगी। इसके पीछे क्या है? विजडम। जब मैं यहां आया, आप यकीन नहीं करोगे, एक बहन ने मुझे सुबह नाश्ता कराया, एक भाई ने और दैनिक जीवन की चीजें मुझे ला करके दी, कहीं से भी मुझे उनके अंदर ये नहीं लगा कि वो ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं इस चीज की उनको सैलरी नहीं दी जाती है। ये रिलेशन किस चीज का है? ये रिलेशन सोल का है। जब आप अपने जीवन को अनजान लोगों के लिए, अननोन लोगों के लिए समर्पित कर देते हैं तो आप सुप्रीम एनर्जी का पार्ट हो जाते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपने समझनी है, एजुकेशन का अल्टीमेट पर्पज क्या है? अल्टीमेट पर्पज है सुप्रीम एनर्जी का पार्ट होना। एंड बिलीव मी, जैसे जैसे आपके अंदर सेक्रीफाइस बढ़ता है, जैसे जैसे आपके मन में दूसरों के लिए तकलीफ बढ़ती है, जैसे जैसे आपके मन में करुणा भरती है, दया भरती है, पेशेंस आता है, तो आप तो पार्ट हो जाते हैं इनफाइनाइट एनर्जी के। और जैसे जैसे आप इनफाइनाइट एनर्जी के पार्ट हो जाते हैं, आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आप वो सब कुछ कम कर पाए जिसके आप हकदार हैं। तो मैं, चूंकि समय कम है, समय की सीमाएं हैं, मैं सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि आप इन ऑल कंडीशंस आप अपने अंदर इन गुणों को लाने की कोशिश करें कि जिससे वास्तव में हम कह सकते हैं कि हाँ, एक्चुअल में शिक्षा का मतलब यही था। एक संस्कृत का श्लोक मुझे हमेशा याद आता है, येषा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते मृत्युलोके भूमि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगासु चरंती। आपकी शिक्षा तभी चरित्रार्थ है जब वह शिक्षा किसी के काम आ रही है, और काम आने वाले व्यक्ति आपका अपना नोन नहीं होना चाहिए, पेड़ नहीं होना चाहिए। अगर आप पेड़ देकर के किसी को कुछ दे रहे हैं तो वो शिक्षा शिक्षा नहीं है। जब आप अनजान लोगों के लिए अपनी जान दे सकते हैं, अनजान लोगों के लिए कुछ भी काम कर सकते हैं, तो आप एक गौरवशाली शिक्षक परंपरा का निर्वहन करते हैं। तो लगातार आप इस चीज का अभ्यास करें, किस तरीके से आप लगातार इन गुणों को अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, तब आप, हम कह सकते हैं एक्चुअली यू आर रियल, इन रियल सेंस यू आर एम्पावर्ड। बिकॉज एम्पावर्ड नॉट फॉर बॉडी, एम्पावर्ड नॉट फॉर माइंड, एम्पावर्ड फॉर सोल। वंस द सोल विल बी एम्पावर्ड, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, योर फ्रेंड एंड एनिमी, एवरीबडी विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स यू, एंड दिस अट्रैक्शन इज यूनिवर्सल बिकॉज गॉड इज अवेलेबल फॉर एवरीबडी, बट वी जस्ट मेक द वॉल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। एज ए टीचर ऑलवेज रिमेंबर यू शुड नॉट हैव एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इफ यू विल रिमूव ऑल टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम योर माइंड, योर एनर्जी विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। एंड डेफिनेटली एवरीथिंग इन द होल वर्ल्ड इज डिपेंड ऑन योर एनर्जी। इफ योर एनर्जी विल हाई, पीपल विल लव यू, पीपल विल रेस्पेक्ट यू, पीपल विल केयर यू, एंड पीपल विल लिसन यू। If your energy will low, then nobody will respect you, nobody will like you, nobody will listen you. So always focus how you can increase this energy. And the only source of this increasing this energy is internal discipline, commitment and love.
to all sons and daughters of the God. And this is your moral responsibility, this is your social responsibility, this is your spiritual responsibility, and this is your academic responsibility. जैसा कि मैडम ने बताया, select a boy, select a girl, select a team, कि I will make the change, I will make the difference for these people, and then you can make the change. एक उदाहरण से मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा. आचार्य चाणक्य की बात की थी, आपको पता होगा उन्होंने एक ऑर्डिनरी बच्चे को चुना भीड़ में से और ये संकल्प लिया, मैं इस बच्चे को राजा बनाऊंगा. और आपको सुनकर ताज्जुब होगा, राजा भी ऑर्डिनरी नहीं, मगध का सम्राट. और उसके बाद इतिहास इस बात का गवाह है, टीचर कैसा होना चाहिए, इतिहास इस बात का गवाह है कि उस सम्राट चंद्रगुप्त के शासनकाल को इतिहास स्वर्ण युग के नाम से जानता है. स्वर्ण युग का मतलब होता है द बेस्ट किंग एवर मेड इन द हिस्ट्री. सो ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर कोई टीचर कोई बात कहे, कोई सोचे और वो मुमकिन ना हो. तो अंत में मैं अपनी बात खत्म करते हुए आपको यही कहूंगा कि आप ऐसा संकल्प पैदा करें कि आज आप अपने परिवार को बदलेंगे, कल आप समाज को बदलेंगे, फिर अपने राज्य को बदलेंगे, फिर अपने देश को बदलेंगे, और फिर संपूर्ण मानव जाति को बदलेंगे, और अंत में पूरे ब्रह्मांड को बदलेंगे. क्योंकि वो सामर्थ्य आपके अंदर है. जिन कारणों से आपने उस सामर्थ्य को खत्म कर दिया है, हमें सिर्फ उन सामर्थ्य उन कारणों पर वर्क करने की जरूरत है. और जैसे ही हम उन सामर्थ्यों को उन चीजों को खत्म कर देंगे, हम फिर से अपने आप को बहुत उच्च स्तर पर पाएंगे. धन्यवाद. थैंक यू सो मच.
थैंक यू प्रोफेसर शर्मा जी. एजुकेशन का मुख्य थीम ही बताए भाई जी, मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन. नर नारायण बने, नारी लक्ष्मी बने, ये ब्रह्मा कुमारी का एम ऑब्जेक्ट भी है, हमारा फ्यूचर भी है. अभी मैं हमारे मेहमानों को हमारी सौगात देने के लिए मैं बहनों को आमंत्रित करती हूँ, ईश्वरीय सौगात देने के लिए आमंत्रित करती हूँ. साथ में मैं डॉक्टर शरणजीत कौर बहन जी, वाइफ ऑफ प्रोफेसर रजबीर सिंह भाई जी, वाइस प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन ऑफ हरियाणा वेलफेयर सोसाइटी फॉर पर्सन्स विथ स्पीच हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन. आइए, बहन जी का भी समाज सेवा अच्छा चल रहा है, उनको भी ईश्वरीय सौगात सम्मानित करें.